सब कुछ न कुछ बातें सुनते रहते हैं। तो कल हम सब ने योग में ज्ञान में नवीनता कैसे लाए, रचनात्मकता। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है कि योग में नवीनता कैसे लाए, तो इसके बारे में। और बाबा का बच्चा तो अनुभवी है ही है, क्योंकि अनुभव बिना तो कोई बाबा का बच्चा एक तो बनता ही नहीं। दूसरी बात है कि अनुभव न हो तो ज्ञान में टिकता ही नहीं, क्योंकि पूरा मार्ग ही अनुभव का मार्ग है। बिना अनुभव हो तो एक दिन भी निकालना ब्राह्मण के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर भी हम लंबे समय से एक ही बातों का उपयोग अथवा प्रयोग करते आते हैं, तो उसमें लंबा समय की बातों में लगे रहने से उसमें रस आना बंद हो जाता है और अनुभव होने बंद हो जाते हैं। फिर भी हम किसी पीटी बातों को हम छोड़ते नहीं हैं, तो फिर जीवन में नयापन का अनुभव नहीं होता है। तो जीवन में उमंग उत्साह जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। कहने में आता है संकल्प समय एनर्जी जैसे कि ऐसे निकलते जा रहा है। तो इसलिए हमें न्यूनेस चाहिए हर दिन, क्योंकि मन बुद्धि को तो जब तक नया नहीं मिलता है तब तक आनंद नहीं आता है। तो ब्राह्मण जीवन माना संसार के सबसे आनंदमय जीवन अगर पूछना हो तो किसको पूछेंगे? ब्राह्मण को पूछेंगे ना, क्योंकि तीनों काल और तीनों लोगों को पता है और हमारा तीसरा नेत्र भी ऐसे खुला हुआ है। तो फिर कभी कभी ऐसे ठंडी ठाक रो जाते हैं, इसका कारण यही बनता है कि हमने न्यूनेस को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, क्योंकि हम सब ब्राह्मण एक्चुअल में स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। हर दिन हम कुछ न कुछ नया खोजते हैं, नया निकालते हैं, नया बातों को रिसर्च करते हैं और नए बातों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन का महत्व ऐसे ही बढ़ता जाए, क्योंकि नया आता है तो नया देने में भी अच्छा रहता है और सुनने में भी अच्छा रहता है। इसलिए हम सब देखते हैं कि नया रचनात्मकता की चीज़ें जो मिलती है तो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि आज हम सब ब्राह्मण सभी पहले पहले जो जमाना थी उससे आज का जो जमाना है न्यू ब्लड का जमाना है, न्यू जनरेशन है, तो उनको वही वही बातें सुनाते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि एक दिन दो दिन चार दिन पाँच दिन तो सुनते हैं, उसके बाद क्या लगता है? बोर लगने लगता है। तो उन्होंने बातें तो वही होती है, बाबा ने जो शिक्षा दिया है आत्म समझ के मुझे याद करो, तो उसमें फिर कई प्रकार के न्यूनेस डालने के कारण से सबको अच्छा लगता है। सभी बाबा के बच्चे इसमें अपने को भाग्यशाली मानते भी है और हम सबको कोई गाइड करने वाला मिला है ये समझते भी है। इसलिए हम सबको रहता है सारे दिन भर में कई सारी बातें आती है ब्राह्मण के जीवन में, तो एक ही एंगल से कोई भी बातें हम देखते हैं, एक ही एंगल से उस बात को निहारने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कई बार हम हरिश खा जाते और हार हो जाती है हमारी, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बदला नहीं है। तो फिर उसी चीज़ से हम उठाने चाहते, तो मन बुद्धि की एक हावी है कि नया न खोजना, पुराने में उलझा के रखना मन बुद्धि का काम है। लेकिन आत्मा राजा अगर शक्तिशाली होगा तो उसको कैसे भी करके ट्रीटमेंट देगा उसको, और अच्छी रीति से वो यूज करेगा मन बुद्धि को। तो जहाँ बुद्धि यूज होती है वहाँ हर दिन नया मिलना शुरू हो जाता है, जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होती है नया खलास हो जाता है। मन और आत्मा के बीच में ही कनेक्शन रहती है उसमें, तो उसके कारण से क्या होता है, बुद्धि साइड हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट तो बुद्धि से करना होता है तो बुद्धि साइड हो गया तो दोनों के बीच में अंदर ही अंदर, क्योंकि मन के अंदर में पुराने संस्कार का प्रकोप होता है, प्रेशर होता है, और मन में जैसे कि बाहरी बातों का भी इफेक्ट होता है उसके अंदर। इसलिए हमें बुद्धि को भी इस्तेमाल करना होगा। तो बुद्धि का इस्तेमाल जहाँ भी होगा तो हम कुछ न कुछ ढूंढ निकालेंगे। इसलिए जीवन के कई सारे ऐसे क्षेत्र है, सारे दिन भर में वही पुरानी चाल पुरानी ढाल चलती रहती है। तो उसके लिए हम क्या करें कि उसको कैसे बदले, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा अच्छी बातें मिले, और हम अपने ही पुरुषार्थ से अपने रिसर्च के कारण से उस परिस्थिति को हमने फेस कर लिया और हम सहज रूप से आगे बढ़ सके, ऐसी स्टडी हमें करना पड़ेगा। इसीलिए आज हमें यह भी एक टेक्निक सीखना चाहिए कि बुद्धि को हमें काम देना आना भी चाहिए और बुद्धि से काम लेने के लिए आना भी चाहिए। तो ये इतना तक हम अगर पहुँचते हैं तो फिर सारे दिन में कई सारे ऐसी चीज़ हमें मिल जाता है जिसके कारण से हम अपनी समस्याओं को आप ही हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अनंत शक्ति छिपी हुई आत्मा के अंदर। लेकिन उस शक्ति को हम जान तभी पाएंगे जब बुद्धि को हम इस्तेमाल कर सके। और बुद्धि माना जैसे कि सेंटर पॉइंट पर बैठा है, जैसे एम्पायर होता है ना, तो एम्पायर जैसे बैठा हुआ है। बाबा ने बोला है तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान दिया हूँ मैंने, दिव्य बुद्धि का वरदान, दिव्य नेत्र अथवा दिव्य बुद्धि का वरदान तुम्हें मिला है, तो तुम कभी भी हार नहीं खा सकते हो संगम एक पर। लेकिन जीत प्राप्त करने के लिए भी कई बार संघर्ष करना ही पड़ता है, क्योंकि माया आती है तो कैसे आती है रुस्तम के साथ, रुस्तम होकर के आती है। तो इसीलिए एक दो बारी हार हो भी जाए, दो चार बार, फिर भी हम उससे कई सारे टेक्निक सीख लेंगे। इसने मुझे क्या सिखा के गया, इसने मुझे क्या हुनर दिखे गया यहाँ से, तो मैंने इससे क्या क्या सीख पाया हूँ। तो इस प्रकार की चेकिंग करने की अगर टेक्निक हमारे पास में है, इतना तक बुद्धि विशाल हुआ है, तो बुद्धि के बल से हम उस चीज़ को देख भी सकेंगे, जान भी सकेंगे, और उसको झांक भी सकेंगे। वो परिस्थिति कहाँ से आई, क्यों आई, किस लिए आई, क्या करने के लिए आई, क्या करके गई, मुझसे अच्छी शिक्षा देखी गई या तो कुछ है ना झोली खाली करके चली गई। तो ये सब चेकिंग का पॉइंट है सारे। इसीलिए हम अपने जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं ना, तो जैसे कि उसके ऊपर हम कैसे स्टडी करें। जैसे कि सारे दिन भर हम व्यर्थों में हैं, तो व्यर्थों को समर्थक कैसे बनाए। पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि यह व्यर्थ चल रहा है। तो व्यर्थ चलती है तो कई सारी हमको निशानी दिखाई पड़ती, तो व्यर्थ है तो फिर दिन में मजा नहीं आता है, खाली खालीपन लगता है, सिर भारीपन होने लग जाता है उसमें, क्योंकि वो चीज़ें आती है तो आत्मा की एनर्जी लस हो जाती है, क्योंकि अंदर हम जागृति की अवस्था में नहीं है। तो जो व्यर्थ बातें जब दिन भर में चलते हैं तो पता चल जाता है कि व्यर्थ हुई है, कहीं ना कहीं हमने है ना लाख को ब्रेक किया है, तो व्यर्थ को मौका दिया है हमने, तो व्यर्थ को मौका दिया है तो खाली करके जाएगी, और उसके साथ साथ नेगेटिव भी इंटरफेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ के साथ साथ ज़्यादा देर तक हम गिलमिल हो गए तो नेगेटिव की तरफ भी ले जा सकती है। तो इसीलिए व्यर्थ होते होते उसको धीरे धीरे समर्थ में कैसे परिवर्तन करें, तो इसके लिए हमें स्टडी करना है कि व्यर्थ आ गई है, व्यर्थ चालू हो गई है, क्योंकि व्यर्थ का कोई ठिकाना नहीं होता कैसे भी आती है, कुछ भी करती है, किधर भी मन बुद्धि को भड़काती है। तो बाबा ने इसमें बोला है कि संकल्प चलते हैं, संकल्प अंदर से आती है अथवा बाहर से भी आती है संकल्प, क्योंकि एक तो बाहर रिमोट होता है परिस्थिति समस्या विघ्न बाधा, वो भीतर के लिए जगाने के लिए बाहर का परिस्थिति रिमोट बन करके आती है और वो स्विच दबा देती तो व्यर्थ का खेल शुरू हो जाएगा और अंधकार शुरू हो गई, रोशनी बुझ गई। तो उस समय हम चेक करेंगे कि व्यर्थ आ गई है तो अभी इसको मैं जल्दी से जल्दी उसको समर्थ में कैसे परिवर्तन कर सकता हूँ, इसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस देना है। तो बाबा ने मुरली में बोला है कुछ समय पहले कि संकल्प व्यर्थ आ गई आया उसमें, और बुद्धि ने सपोर्ट दिया उसको तो बुद्धि ने सपोर्ट देने के कारण से तो फिर व्यर्थ का चांस ज़्यादा हो गया और व्यर्थ का परसेंटेज बढ़ना शुरू हो गई। और फिर उसी समय ऐसे गैदरिंग अथवा इष्ट मित्र बंधु बांधव भी मिल जाते और उसी समय वो भी चांस लेते, क्योंकि ये व्यर्थ में, तो व्यर्थ जो बैठता है तो चांस लेने वाले बहुत होते। कोई कहीं किसी बात में बिजी होते हैं तो बोलेगा ये तो बिजी, अभी इसको चलाने नहीं चाहिए तो इसलिए उसने उस समय मौका दिया है। तो अभी मैं व्यर्थ को समर्थ में पैसे परिवर्तन करूँगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि सबसे पहले तो समर्थ बनने के लिए मैंने श्रेष्ठ संकल्पों का पूंजी कितना जमा किया है, श्रेष्ठ संकल्प मेरे पास में कितनी है। और श्रेष्ठ संकल्प है लेकिन कई बार ऐसा होता है वो मर्ज रहता है वो समय पर यूज नहीं होता है, समय पर बुलाने पर भी नहीं आता है, क्योंकि उसको हमने सैकड़ों बार उसको अभ्यास करके नहीं देखा है, कई बार बुला के नहीं देखा है उसको, कई बार लाके नहीं देखा है, तो इसलिए वो मर्ज रहती है। तो उसको हमें बार बार बुलानी पड़ेगी। तो श्रेष्ठ संकल्प जब आएंगे तो व्यर्थ संकल्प धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं चलते चलते कुछ अचानक हम सफर करते समय कुछ बातें आगे आती है, डायरेक्ट ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का भी नुकसान होता है, पैसेंजर को भी झटका लगता है। तो इसीलिए उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे गियर चेंज करनी पड़ेगी। जैसे पाँच में है तो 4, 3, 2 करते करते जो पैसेंजर को भी पता न चले, गाड़ी का भी नुकसान न हो, तो हमें पता होना चाहिए इतनी ज़्यादा स्पीड है व्यर्थ की, फालतू की, नेगेटिव की, तो इसकी स्पीड कैसे कम किया जाए। तो एक छोटा सा संकल्प पत्थर के रूप से जैसे तालाब में फेंकते हैं ऐसे डाल दिया जाए तो थोड़ी सी उस कंट्रोल कर लेगा उस तब तक के लिए। तो दूसरी बार थोड़ा सा कुछ रुक करके दूसरा संकल्प डाल दिया जाए, उससे शक्तिशाली संकल्प करते 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 5-10 ऐसे संकल्प हमें प्रहार करना पड़ेगा, तो फिर इस समर्थ संकल्प हमारे पिकअप करना शुरू करेगा। तो समर्थ संकल्प जब बुद्धि में आती है तो कुछ समय बुद्धि में उसी संकल्प में हमें रमण करना होगा, क्योंकि उसके जो व्यर्थ के वाइब्रेशन इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं तो उसको हटाने के लिए श्रेष्ठ संकल्प से कुछ समय उसी संकल्प में स्थित होना होगा। तो उसी संकल्प में स्थित होने के लिए और उसी श्रेष्ठ संकल्पों को ज़्यादा देर थमा के रखने के लिए उस संकल्पों के ऊपर भी हमें कई बार स्टडी किया हुआ होनी चाहिए और उसका हमने जैसे कि रसपान किया हुआ होनी चाहिए। उसी संकल्प से हजारों संकल्प के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ होनी चाहिए। तो ऐसा ऐसे मजबूत संकल्प वहाँ पर हम रखेंगे तो व्यर्थ की चांस धीरे धीरे खत्म होगी। तो जो शुद्ध संकल्प के साथ में बाबा का संबंध है और बाबा की शक्ति है, बाबा की दुआएं हैं, और व्यर्थ नेगेटिव होगा तो किसका सहयोग है उसमें, रावण का, माया का है ना तो इसी कारण से वो संकल्प वहाँ ठहराना है। और फिर हम ऊपर एक अचानक ऊपर जाना चाहेंगे ना, जैसे कि संकल्प से सूक्ष्म वतन परम धाम, उस समय इतना जल्दी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसको ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। तो उस समय कुछ समय उसी संकल्प में रह करके जैसे कि व्यर्थ का प्रकोप लगभग खत्म हो गया है, बहुत देर हो गई है, वह हम अच्छी बातों में मगन हो गए, अब व्यर्थ सोचने से भी नहीं आती, ऐसी स्थिति जब होगी तो श्रेष्ठ संकल्पों के बल से हम फिर ऊपर जाना चाहे संकल्प को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा सकते। तो इसमें हमें ये चीज़ें देखना है। तो कई सारी बातें हम ये भी स्टडी कर सकते हैं कि जो आदतों के ऊपर भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की छोटी छोटी आदत होते हैं ना, इसे तो कोई व्यर्थ बातें चलाने की आदत, फालतू बातें चलाने की आदत, और छोटी छोटी चीजें दिन भर में खाने पीने की भी आदत होती है, तो उसके कारण से ब्राह्मणों के जीवन में एक तो संकल्प भी हावी हो रहे हैं, तो एक आदतें भी हावी हो रही है। तो उसके ऊपर भी अगर हम स्टडी करना चाहें, तो न्यूनेस लेना चाहें, तो कल चले हुए संकल्प, कल चले हुए जो विचार है, वो उसी में अगर हम रहेंगे तो ब्रेक लगाने की ताकत नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेक पावरफुल नहीं है। तो ब्रेक को पावरफुल बनाने के लिए बुद्धि को इतना शक्तिशाली बना के रखना पड़ेगा, और बुद्धि में ज्ञान भरपूर होनी चाहिए। जितना बुद्धि में ज्ञान भरपूर होगा तभी मन को लगाम लगाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा दिन भर ऐसे व्यर्थ में चलती रहेगी बुद्धि मन। तो जितनी गहरी ज्ञान में है ना, ज्ञान बुद्धि में चली जाएगी, तो बुद्धि में अनुभव भी चाहिए, बुद्धि में वैराग्य भी चाहिए, बुद्धि में न्यारापन भी चाहिए, बुद्धि में उपरम अवस्था भी चाहिए। ये सब हम बुद्धि के बल से ही करते, तो वो चीज़ हमारे पास में अगर होगा तो फिर ब्रेक लगाना, और कोई ऐसे दृढ़ संकल्प हमने ठान लिया कि मुझे इसको करना ही है, इससे बहुत मुझे नुकसान हुआ है, अभी तक हम इसके चपेट में आए हैं, तो इसको मुझे कैसे भी करके छोड़ना ही है, तो ये संकल्प अगर हमने रख ली, ठान ली, तो फिर हम आगे के लिए मजबूती दे सकते हैं। और बीच बीच में यही संकल्प की हम चेकिंग करते हैं कि कहाँ तक मैंने सफलता पाई है, और ये फिर बीच बीच में ये संकल्प जैसे कि आदत बनी होती है तो मन को खींचने की कोशिश करती है, और मन भी बुद्धि के ऊपर प्रकोप डालने की कोशिश करती है उस समय, प्रेशर डालने की। तो उस समय हमको ये पता होनी चाहिए कि मैंने इस संकल्प के लिए दृढ़ संकल्प किया हुआ है, तो इसके लिए मैं इस संकल्पों को वापस नहीं ले सकता हूँ। तो इसीलिए अभ्यास के द्वारा हम अपने को कितना मजबूत बना रहे और कितने शक्तिशाली बना रहे, ये भी चेकिंग होती है, तो फिर उसके ऊपर धीरे धीरे हम इसके विजयी बनते हैं। तो इसके लिए कई दिन, जैसे कि कहने में आता है तो 21 दिन 22 दिन 20 दिन की स्टडी चाहिए, फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए, उसके बाद में भी बीच बीच में संकल्प वापस आने की कोशिश करती है, तो उस समय हमें चेक करना चाहिए कि मैं इसके ऊपर विजयी बन गई हूँ, ये संकल्प मुझे सलाम भरने के लिए आया है। और उसी समय हम अलबेले में होंगे, हमें वो पता ना हो ना, तो फिर पुरानी आदत रिटर्न हो सकता है, इसलिए उसके ऊपर भी हमें संपूर्ण रूप से फोकस देना है। तो और बातें हम, जैसे कि आज हम सबको बाबा के साथ सर्व संबंधों की बातें तो हम करते हैं, लेकिन सर्व संबंधों में क्या क्या फायदा होता है। एक तो बाबा से हम सर्व संबंध का अनुभव करते हैं, तो एक बात तो ये होगा कि बाबा से हमारा प्यार हर तरह से बढ़ेगा। तो उसमें दूसरी तीसरी बातें यह हमने देखा है कि संकल्प जो संबंधों में जो दरारें पड़ी है, आज मनमुटाव है, संबंधों में तेरी मेरी चल रही है, तो उसके ऊपर भी हम स्टडी कर सकते सर्व संबंधों का। और तीसरी चौथी बात है कि संबंधों में जो ज़्यादा लगाव झुकाव होने के कारण से हमारा योग बार बार टूट रहा हो और कोई ना कोई बीच में याद आता हो, तो उसके ऊपर भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, नवीनता ला सकते हैं। अभी तक जो भी किए गए उसको एक पासा रखना होगा, क्योंकि अभी तक जो भी किया हम आरे खा रहे थे, असफल ही हो रहे थे, और बुद्धि बार बार भटक रही थी। एक तो जहाँ ज़्यादा लगाव होता है वहाँ बुद्धि जाती है, दूसरा जहाँ नफरत होता है वहाँ भी बुद्धि जाती है। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर हमें देखना होगा कि बुद्धि किस हिसाब से जा रही है। नफरत की तरफ जा रही है तो सर्व संबंधों के माध्यम से उस आत्मा को भी बाबा के साथ ये संबंध का अनुभव करेंगे तो वो आत्मा को भी सकाश देना पड़ेगा, किसी न किसी संबंधों में तो जुड़ा ही हुआ होगा, और वो भी बार बार हमें याद न करे, क्योंकि उसको भी कभी न कभी हमने दुख पहुंचाए होंगे, दर्द दिए होंगे, पीड़ा पहुंचाए होंगे, तो उसकी जो शक्तिशाली जो वाइब्रेशन, निगेटिव वाइब्रेशन है ना, वो एक प्रकोप के रूप से हमारे पास आ जाता है, और उसके लिए हमें तो संबंधों में जो सर्वसंबंध का जो अनुभव करना है तो उससे ये सारी बातें फायदे होंगे। एक तो ज्यादा लगाव झुकाव बढ़ रही हो बार बार बुद्धि, ये छोटे छोटे कुमारी और बाबा के बच्चे अभी शुरू शुरू में बनते हैं और सेंटर में जाते हैं, सेंटर में रहते हैं और सेंटर की थोड़ी सी पालना तो ऊपर नीचे होती है, तो उस समय माँ बाप और परिवार ज्यादा याद आता है। और दूसरी बातें होता है कि अभी अभी हम ज्ञान में आकर के जैसे कि संपूर्ण नष्टमा हो गए, लेकिन उस समय जहाँ भी हमने ऊपर नीचे करके आए कहीं किसी के कर्जा है, किसी के कुछ करके, किसी के लिए जैसे कि ऐसे करके आए हैं, तो उस समय भी वो बुद्धि वहाँ पर जाने की कोशिश कर सकती है। तो इसलिए उस समय हमें ये देखना होगा कि कल तक मैंने जो भी किया था उसके लिए वो करता था तो हम भी करते थे, लेकिन हमने नेगेटिव को सूट नेगेटिव से ही किया था, लेकिन अभी हमें ये चेंज करना है क्योंकि उसके लिए थोड़ी विशाल बुद्धि भी चाहिए और विशाल हृदय भी चाहिए। और कई सारे बाबा ने हमें स्मृतियाँ दिलाए हैं, तो इस स्मृति के आधार से ही इस बाजी को जीता जा सकता है। इसलिए योग में हम झट्टे से योग लगाने चाहते हैं तो पहले उसके बेस को देखना पड़ेगा ना, बुद्धि कहाँ जाती है, कैसे जाती है, कहाँ व्यर्थ है, कहाँ फालतू है, कहाँ लौकिक अलौकिक में ये संबंध लगाव है, झुकाव है, इस सब बातों को बेस बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि नया तो हम लाना चाहते हैं लेकिन पुराने हमको घसट के ले जाए और जो नए के चक्कर में पुराना भी गायब हो जाए। हाँ, इसलिए जैसे कि हम उसको कई सारे विजन बना सकते हैं और विजुलाइजेशन कर सकते हैं, उसको नया बनाने के लिए हम यही कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने तो बोला ये पुरानी दुनिया छिछी दुनिया है, और ये पुरानी दुनिया में सभी कहते हैं कि मतलब की दुनिया है, तो आवश्यकता पूरा होने तक ही सब ये सब बातें करते हैं, उसके बाद में हमें कोई मतलब नहीं रखते। इसीलिए हमें ये नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज के साथ साथ विजन भी तैयार होनी चाहिए, टोटल इतना अच्छा विजन होनी चाहिए कि जैसे साले दुनिया बाबा ने बोला कि ये तो कब्रिस्तान होने वाली है, तो कब्रिस्तान में दिल लगाना मैंने क्या हुआ है ना, कब्रिस्तान में हमने दिल लगाया, इसका मतलब हुआ कब्रिस्तान में दिल लगाने वाले वो भी उसी हालत का होगा। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि सारी, तो इसके लिए एक कमेंट्री भी तैयार कर सकते हैं हम, इसीलिए कमेंट्री इसी हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो हम पुरानी दुनिया से नाता कैसे टूटे और बाप से जुटे, इसके लिए हम इस प्रकार की कमेंट्री बना सकते हैं कि सारी दुनिया जैसे सोई पड़ी है और किसी के पास में है आत्मा निकल चुकी है, और वो आत्माएं इतने भटक रही है क्यों, क्योंकि उनको उन्होंने यही काम किया है जो जीवन भर जो न करने वाली चीजें किए हैं। तो इसीलिए उन सबको देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी कि जैसे कि अब तो हम सब कुछ जाना है, रिटर्न जर्नी का समय चल रहा है, सब, और उनको भी सभी भटक रहेगा, कोई किसी में घुस रहे, कोई किसी में घुस रहे, और सबको परेशान कर रहे, मेरी इच्छा पूरा करो, मेरी तमन्ना पूरा करो, ऐसी इच्छा रखने वालों की यही हालत तो होनी है, क्योंकि बाबा ने और एक श्री सुस्तानी परमेश्वरी करके एक किताब है उसमें दिखाया गया है, तो उसको यहाँ जोड़ सकते हैं कि जाते समय शिव की जो बरात बन करके जो गए थे उसमें दिखाए हैं भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नन दैत्य सब उसके बरात बन करके गए थे, है ना, बराती बन करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस तरीके से विजन बना सकते हैं, और मैं सारी बातों से लगभग संपूर्ण रूप से मैं डिटैच हो चुकी हूँ, जितना भी लेना देना मेरा था बाबा से पूर्ण रूप से मैं शक्ति खींच रही हूँ, और सभी आत्माओं के रहे वही हिसाब किताब संपूर्ण रूप से चुकता हो गई है, और बाबा इन सब का कल्याण कर रहे हैं, और ये जो भी मेरा रहा हुआ है सूक्ष्म में स्थूल में ये सब आत्माएं तृप्त होकर के बाबा की गुणगान गा रही है, क्योंकि हमने वाइब्रेशन दिया तो बाबा के साथ जुड़ करके दिए ना, तो इस कारण से वो सभी आत्माएं मुक्त होती, हम भी आगे आगे, वो आत्माएं भी सबसे पीछे पीछे जा रही है, तो परम धाम में पहुंच गई है और बाबा के सब नजदीक हो गए हैं। इस तरीके से इस प्रकार का विजन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद में आगे हमने देखा है कि योग के टाइम में हमें कभी कदा ऐसा भी रहता है कि योग के टाइम में ज्ञान भूल जाता है। तो योग के टाइम में जहाँ ज्ञान भूल जाता है तो उसी समय नींद आने का, झुटका लगने का चांस ज्यादा होता है, करांटे भी मार लेते हैं कई बार, तो कई सारे तो इसका मतलब ये हुआ कि मन बुद्धि खाली है। तो खाली मन बुद्धि के लिए तो दुनिया में ऐसे टाइटल दिया गया है, खाली मन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें तो नहीं है, लेकिन खाली होने के कारण से ये समस्या जरूर आती है। तो इसीलिए हमने इसको स्टडी के रूप से, न्यूनेस के रूप से उपयोग में लाए थे कि योग करते समय ज्ञान को हमने चर्निंग करना शुरू किया था, उसको विचार सागर मंथन करना शुरू किए। तो तब से लेकर के अब तक भी लगभग यह स्टडी हमारा जारी है अनुभव। तो ऐसा कभी ऐसा दिन नहीं होगा कि योग में मुझे नींद आता हो, शायद ही कभी। तो इसका मतलब सबसे पहले तो उसने वहाँ पर जो भी वातावरण वायुमंडल बिगाड़ के रखा है उसको थोड़ा सा जगा करके थोड़ा मुंह धो के आओ, इस तरीके से प्यार से बोलना पड़ेगा। हाँ नहीं, इसीलिए ऐसा हो सकता है, संभव है तो हम ये काम कर सकते हैं, संभव है तो। अगर नहीं, ये हमारे बस की हमारे पहुंच की बातें नहीं है, तो हम अपने को बचा सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि इतना सारी दुनिया करंटे मारे, मेरा योग लग रहा है या नहीं लग रहा है उस समय, ये हम मेरा योग जा रहा है कि नहीं उसके प्रति, उसके इस हालत में भी मेरी शुभ भावना शुभ कामना उसके साथ जा रही है और मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, क्योंकि भीतर एक बार एक इस हिसाब से नहीं, दिल से कर रहा हूँ। तो दिल से अगर हमने शुभ भावना दिया तो वो जागने का चांस भी बहुत होता है, क्योंकि कई बार हमने सतीश भाई के आगे योग करते हमने कई साल निकाले हैं, तो स्वयं वो को भी वो जगा देते हैं कई बार, ऐसा देखा है। हाँ, तो शुभ भावना से जगाए कई बार हमने देखा है। तो इसलिए तो हम शुभ भावना रख सकते हैं तो ठीक है, तो बिगड़ने का चांस, अच्छा कर सकते हो ठीक है, लेकिन बुरा ना हो सके, ये इस समय हमें ध्यान देना है। तो इसीलिए हमने कई बार ये प्रयोग करके देखा है, न्यूनेस ला करके देखा, माना क्रिएटिविटी के योग में ज्ञान का प्रयोग किया हमने, अच्छी रीति से किया और दो दो घंटा तीन तीन घंटा उसकी जो विचार सागर मंथन किए थे उसके कारण से हमारी श्रेष्ठ संकल्पों का परसेंटेज भी बढ़ती गई और बाबा से करीबी भी आ गया। तो इतने नजदीक बाबा से हम हुए जैसे कि बाबा हमसे अलग ही नहीं है, क्योंकि ये प्रयोग न्यू था मेरे लिए, जीवन के लिए। तो इसलिए हमें भी कभी खाली मन से अगर योग में बैठते हैं तो ये सब चीज़ें होती है, इसलिए खाली मन से अगर बैठना नहीं, हमको योग करना है तो कुछ न कुछ मसला हमारे पास चाहिए। तो ये हमें अगर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे जो आज हमें नींद आ रही है, झुटका आ रहा है, इससे बचने का सहज साधन है। तो ये अनुभव हमने तभी किए थे, तो 5-6 साल पहले या 7 साल पहले किए थे, तो ये आज मेरे लिए जैसे कि नील का पत्थर साबित हुआ है। तो ये भी सभी आप सबको भी अगर ऐसा चांस मिलता है, आप करना चाहते हैं, होता है, तो एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और ये सभी बातों से आप मुक्त हो सकेंगे। तो इसलिए हमें इसमें भी थोड़ा ध्यान देना है। तो फिर हमें ज्ञान जैसे कि गुण और शक्ति को योग में कैसे प्रयोग करें, इसको भी हमें थोड़ा सा, क्योंकि बाबा तो हर दिन बोलते रहते हैं, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे क्योंकि हम कर क्या रहे हैं और हमसे क्या हो रहा है कि ऐसे गाड़ी तैसे चल रहा है, कोई प्राप्ति और कोई है ना अपने न्यूनेस की जो अनुभव जीवन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमने अपने को ढीला ढाला छोड़ के रखा हुआ है। तो ढीला ढाला हम छोड़ेंगे तो कल भी जो स्थिति आज भी हुई होगा, तो 10 साल के बाद भी देखा जाए तो वही रहेगा क्योंकि हमने बीच में कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए बाबा ने हम सबको जो सर्व गुणों का जो बाबा ने लिस्ट बताए हैं और शक्तियों का भी बताए, तो उसमें कैसे ये मन सेवा में यूज किया जाए, अपने जीवन में यूज किया जाए, तो उसके लिए भी हम कमेंट्री बना के देखा था इसको। जैसे कि जिस गुण की कमी, बाबा ने भी 3-4 दिन पहले मुरली में बोला था, जिस व्यक्ति जिस गुण की कमी है वो दान करो, तो वो दान करने के लिए हमें जैसे कि लाइट हाउस बनना पड़ेगा। जैसे कि हमें, हमारे पास में सरलता का गुण नहीं है, तो पहले सरलता के लिए गहरी स्टडी करनी पड़ेगी। सरलता के लिए, सरलता क्या है, सरलता कैसे आती, सरलता कब आती, सरलता कहाँ जरूरत पड़ सकता है, सरलता अगर मेरे जीवन में है तो क्या क्या फायदे होंगे, सरलता के गुण सबको क्यों अच्छा लगता है, और ये सरलता के गुण देवी देवता के लिए खास गाए जाते हैं, तो ये गुण मेरे पास में कैसे आएगी, उसका फुल नॉलेज अगर मेरे पास में होगा तभी हम लाइट हाउस बन करके उसके वाइब्रेशन और सभी आत्माओं तक पहुंचा सकते हैं। अगर उसका नॉलेज नहीं, हल्के में रटी रटाई ज्ञान से अगर हम करने चाहेंगे तो जितना प्राप्ति होनी चाहिए उतना नहीं होगा, उसी अनुसार का रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉलेज अंदर से अंदर तक पहुंचा हुआ होगा ना उसके, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए सर्व गुणों के लिए भी हम इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही गुणों को करने के लिए बाबा बोला है, और एक ही गुणों के हमें स्पेशलिस्ट बनना है, बाबा ने कई बार मुरली में बोला है। तो आज तक हमने कौन से गुण की स्टडी की है, कौन से गुण में हमने चिंतन किए है, तो गुण की गहराई में जब हम जाते हैं तो गुण अंतर जगत में पहुंच जाती है वो चिंतन करते करते, और बुद्धि से जितना हम चिंतन करते हैं वो धीरे धीरे उतरते हुए अंतर मन तक पहुंच जाती है, और पहुंच के जब रिटर्न आएगा तभी हमें काम आता है वो चीज। वहां तक पहुंचाया नहीं गया तो आधे रास्ते में हम यूज करना चाहेंगे तो उसका हमको फायदा नहीं मिलेगा। तो अंतस्करण तक पहुंचा करके, चित्त में पहुंचा करके, बाबा बोलते हैं स्व का रूप बनाओ, उसको स्वयं का रूप बनाओ। स्वयं का रूप बनाने के लिए चिंतन अति आवश्यक है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं जाना होता है तो उसके लिए स्टडी करता है, ये जगह कैसा है, वहाँ पहुँचने से वहाँ का नियम कानून कायदे, वहाँ का हवा पानी कैसा है ना, विदेश न्यू नेस्ट दुनिया में जाना चाहेगा नई दुनिया में, उसके लिए हाँ फिर भी उसको जाना होता है, उनका बंद करके नहीं जाता है कि वो किसी के साथ में जाए तो भी वो अपनी सेफ्टी के लिए वो सारी बातें अपनाना पड़ता है। तो इसी रीति से एक एक गुण की गहराई, जैसे कि कई बार हमने इसमें अनुभव करके देखा था, एक गुण के पीछे हमने जैसे कि 5-5 घंटा 6-6 घंटा तक निकाले, तो उसमें इतने अच्छा अनुभव हुए कि जैसे कि जैसे उसमें डूबी रहूं, डूब लागे रहूं ऐसा लगता है। जब तक मन को मन का रस नहीं मिलता है तब तक छोड़ने नहीं चाहिए, अंदर से जब रस आना शुरू होगा तब वो अपने काम में आ जाता है। हाँ तो इसलिए उसके लिए दृढ़ता भी चाहिए, गहराई से हम उसको करके दिखाने की जुनून होने चाहिए, जज्बे, तभी ये काम हमसे हो सकता है। इसीलिए इसमें हमने अभी तक, फिर उसको भी एक्सपेरिमेंट करके देखना है न्यूनेस में, ऐसे आपने ऊपर ही कर लिया, थोड़ा बहुत हो लिया, थोड़ा बहुत अनुभव कर लिए, इतने में नहीं छोड़ना है उसको, हर व्यक्ति के साथ में एक्सपेरिमेंट करके देखना है ये कहाँ तक यूज में आया है, कहाँ तक सफलता मिली है, और कहाँ तक सफलता मिलना बाकी है, और कितना करना पड़ेगा इसके लिए, लागे रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हल्के में छोड़ते रहेंगे तो यह थोड़ा, जैसे कि 10 गड्ढा बना लिया तो 10 गड्ढे में पानी कितना जमेगा, तो वही गड्ढा जाकर के मच्छर पैदा करेगा। तो एक कुआ खोदना है तो एक के पीछे लागे रहना पड़ेगा, उसकी गहराई में पहुंचना पड़ेगा। हाँ लेकिन मच्छर पैदा ना हो कि अच्छा ठंडा पानी मिले हमको, तब एक खोदने की आदत पड़ेगी तो और भी हमको आदत पड़ जाएगा, तब जाकर के फिर जीवन में जो आज के जो हलचल है, जैसे कि अप डाउन है, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेक अथवा लगाम लगाया जा सकता है। नहीं तो कल से, आज से और आगे कितने साल से और आगे कितने साल तक ये जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ब्राह्मण जीवन माना एक्सपेरिमेंट करने वाला जीवन है, शक्तियों के साथ भी ये काम करना है, क्योंकि शक्तियां हमारे पास में है तो हमने किसी के ऊपर न दिया नहीं लिया तो उसका क्या मतलब है। और हम खुदे कमाए खुदे खाए, किसी को दिए ही नहीं, तो फिर हमारी समस्या और परिस्थिति में उस गुण और उस शक्ति को कितना यूज किया मैंने, और उस बातों से निजात मुझे कितनी मिली है, इसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि ये तो हर दिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाली मन बैठ के ब्राह्मण क्या करेंगे। तो इसीलिए हमें इसका भी उपयोग करना है। तो और बातें हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंट के लिए अंतर्वाक शरीर द्वारा कैसे सेवा किया जा सकता है। तो इतनी सारी स्मृतियाँ हमारे पास में हैं, तो जैसे कि ये स्मृतियाँ ही हमें को बॉडी से डिटैच कर देती है, जैसे कि देह भान से हमको दूर ले जाती है। तो इसका भी हमने कई बार इस एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो हमारे लौकिक में ही हमें करना पड़ा कई बार एक्सपेरिमेंट, कि लौकिक में हमारा छोटा भाई जब बीमार हुआ था तो डॉक्टर ने अल्टीमेटम दिया था, ये 15 दिन से आगे नहीं बचेगा। तो ऐसी हालत आ गई थी, और लगभग लीवर का प्रॉब्लम था, काफ़ी लगभग लिख के ही दिया था डॉक्टर ने, 90-96% लीवर डैमेज, इसके कोई इलाज नहीं। तो उसके बाद में हमें घर से फोन आया ऐसी हालत में। पहले तो डॉक्टर का नाम लेना ही नहीं चाहता था, तो भाई है ना, मुझे डॉक्टर के पास जाने ही नहीं। तो इस हालत में वो जैसे कि ढीक रहा हो, अड़िक रहा हो, उसने कुछ डॉक्टर के पास जाने की एक आध बार गया, जो डॉक्टर ने बता दिए। तो इस हालत में हमको फोन आया, घर से जाना तो 2-3 साल के बाद हम जाते थे, 3 साल के बाद में। तो फोन आया कि 6 दिन ही जब बाकी था हमारा, तो आज ही फोन आ गया, ऐसी हालत में थे। तो फिर हमने बाबा को बोला कि ऐसी हालत में है वहाँ पर समस्या। तो बाबा से काफ़ी देर तक, जैसे 1.5 घंटा तक रुअरियन इतना चली जैसे कि आंखों से पानी तक भी आ गया। तो लास्ट में इस निष्कर्ष पर हम पहुँचे कि अर्जी तो मेरी है लेकिन मर्जी आपकी है, जो करना है आप करो। इस हालत में बाबा को छोड़ा। तो फिर अपने टाइम पर ही हम घर गए, जल्दीबाजी उतना नहीं किए। तो करते करते वहाँ जाने के बाद में हाथ जोड़ करके घुटना टेका उसने कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, हाथ जोड़ा उसने। तब तक डॉक्टर का नाम लेने नहीं चाहता था। तो उसको फिर हमने उसी समय एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल पहुँचाए। रात को 11 बजे डॉक्टर ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, ले जा सकते हो, रात को 11 बजे। तो फिर तो रात को वहाँ थोड़ा नज़दीक में मौसी का घर था, छोटी माँ का, वहाँ ले गए। तो फिर दूसरे दिन जब उसको घर ले गए थे गाड़ी एम्बुलेंस में, कि सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, अब तो गया कि गया फलाना। सारे लोग, गांव के लोग, सैकड़ों लोग आते थे दिन में मिलने के लिए, अंतिम विदाई माना कि अब जाएगा, कि डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया है। तो इस हालत में था वो किस। तो फिर हमने पहुँचने के बाद में अब फिर सुबह से भी उठ करके उसको दृष्टि देना शुरू कर दिया, 3 बजे से 3:30 बजे से, और कई सारी बातें उसको बाबा की बातें सुनाए। और जब मैं दृष्टि देता हूँ तो इस संकल्प में तुम रहना, मन में ये विचार करना, क्योंकि तुम नेगेटिव सोच रहे हम पॉजिटिव डाल रहे, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी एक्सपेरिमेंट में आ जाता है ड्यूनेस में। तो फिर उसको कई सारी बातें सुनाए। अब मरता क्या नहीं करता उसने चालू कर भी दिया। वो चालू कर दिया उसने, अब बचना है मुझे, बचना है, वो कर रहा क्या है। तो चालू हो गई उसकी। तो करते करते कि कई दिन तक मैंने लगभग 10-12 दिन तक दिन में जब भी फुर्सत मिलता दृष्टि देना चालू कर दिया। तो फिर 10 दिन के बाद में छोटा भाई मेरा विदेश से आया, उससे मिलने के लिए आया कि अंतिम विदाई के, अभी सब तरफ मैसेज पहुंच गया है। तो उसके बाद में हमने, भाई ने क्या बोला कि भैया अभी आप आए हुए बहुत दिन हो गया है, आपको लौकिक या अलौकिक में सेंटर में कहाँ कहाँ जाना भी होगा, इस हालत में अभी कब तक बैठे रहोगे, मैं आ गया हूँ, मैं इसकी सेवा करता हूँ, आप जहाँ जाना है जाओ, बोल के उसने छुट्टी दे दिया मेरे को। तो जहाँ भी जाता था सबसे पहले सुबह उठ के फोन करता था कि क्या खबर है, तो ठीक है। तो रात को भी हम सकाश देते रहते थे। तो ऐसे करते करते हमने लगभग 35 दिन निकाले। फिर आ रहे थे तो वहाँ पर जो एक विधान होता है कि जाने की फुल तैयारी होती है, 2-3 दिन बचता है ना, तो उसको गाय का दान करते, बछड़ी, तो गाय बछड़ी की तो दान करके कि उसकी जो मन में कुछ भी ना रहे, जाना है तो आराम से जाए, इस हिसाब से गायदान बोलते हैं उसको। तो वो मैं घर से निकल के 50 किलोमीटर आगे सेंटर में था, तो घर से ये मैसेज आया, इसका जो भी है रहे हुए बातें हमने पूरा कर दिया। तो फिर हमने मम्मी को बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जहाँ भी पहुँचूंगा आपको मेरा फोन मोबाइल ऑन रहेगा, आप बता देना ऐसा केस अगर होगा तो मैं कैसे भी रिटर्न आ सकता हूँ। तो हर स्टेशन में हम ये ट्राई करते थे, तो मैसेज ठीक ठाक आया। 2013 22 अक्टूबर को बाबा मिलन का दिन था, अच्छा 24 तारीख को हम 22 तारीख पहुँचे थे, तो 24 तारीख बाबा मिलने बैठे थे तो मम्मी का फोन आ गया। अब अंदर में बैठा हूँ, अब वो लग गया कि गया होगा, अभी हालत ऐसी थी, तो मोबाइल लेकर के भागा बाहर और फिर रिकॉल किया तो मम्मी ने बोला अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है हल्का सा। तो फिर फोन उसको दिया उस भाई को, तो वो क्या बोलता है रोते हुए, बाबा को बता देना मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, बाबा को कह देना, ये सब बातें सुनाना शुरू कर दिया उस। अब बाबा आए हुए थे तो फिर बाबा ने सुन लिया होगा सारी बातें। तो फिर उसकी बातें सुन करके जैसे कि अभी जैसे कि थोड़ा सा मैंने भी बोला कि थोड़ा सा तबीयत में सुधार है बोला। फिर बाबा को सुना दिया सारा। फिर 24 तारीख ऐसा हुआ, 25 तारीख से हमने इसी कमरे में बाबा का कमरे में 3 दिन तक रात नाइट भट्टी किए थे। तो 4-5 लोग सुशील भाई और को भी बुलाते थे, लेकिन मैं बोलता नहीं था ऐसी प्रॉब्लम है बोल के। तो फिर करते करते 15-20 दिन में फोन आता था लगभग, थोड़ा सा ठीक हो रहा है, थोड़ा सा ठीक हो रहा है, थोड़ा सा ठीक हो रहा है। और एक दिन एक महीना के बाद में फोन किया कि मैं खेती में पहुंच गया हूँ। खेती में माँ बाप जो काम करते हैं थोड़ा देखने के लिए। तो फिर 15 दिन के बाद में फोन आया, मैं गाँव में पहुँचा हूँ, अभी मैं गाँव में टहल रहा हूँ बोला। अरे मैंने तो बाबा को इतना थैंक्स दिया। करते करते 3 महीने में तो व्यक्ति लगभग पूरी उसको रिकवरी हो गई। तो आज वो डॉक्टर ने दिया गया अल्टीमेटम देते हुए 6 साल हो गया, तो खुद ही अभी ट्रक खरीद के चला रहा है। मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा है। विश्वास तो जितना है करना चाहिए, लेकिन तो ये भी प्रैक्टिकल में प्रयोग करके दिखा है। तो इसीलिए आप सबके भी जीवन में इस प्रकार की बातें आती है, होता है, होता तो ही है, क्योंकि संसार में ना बाबा ने बोला बिना बीमारी के तो लोग उन्हें मुश्किल आज ऐसा दिन है। तो ये वो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है। तो नहीं तो प्रयोग तो, लेकिन जो हम जिन्स का जो अपना जो प्रॉब्लम होती है ना, तो बाबा ने बोला कि दादी ने भी मनसा सेवा देने के लिए दादी जानकी ने बोला था, तो हम दर्दी होने चाहिए, जैसे कि उसका प्रॉब्लम से मेरा प्रॉब्लम, ऐसी हालत में अगर आप मनसा सेवा करोगे तभी जाकर के लगता है। ऐसे ही नहीं कि हल्के में मैंने सकार दे दिया, उसके अंदर तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ घर में। एक बार उससे पहले मम्मी को पैरालिसिस हुआ था, पूरे एडी से चुटी थी एक साइड पूरे, और इधर ही आ रहा था योग करने के लिए, 5 बजे का टाइम था, घर से फोन आया कि मम्मी को पैरालिसिस हो गया है। तो यहीं कोने में बैठा, और मैंने बाबा को क्या बोला, उड़ के जाऊं तो मेरे पंख नहीं, अभी मैं तो यहाँ हूँ आपके दरबार में आपके साथ हूँ, अब जो करना है करना तो आपको पड़ेगा, कि मैं जाऊँ तो भी करके आ सकता हूँ लेकिन मन से जरूर मैं जा सकता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किए थे। तो 6 दिन के अंदर मम्मी ठीक हो गई। 3 दिन तक नेपाल माने वहाँ के जो बंद था, हॉस्पिटल पहुँचा भी नहीं सकते थे, ऐसी हालत थी। तो लास्ट में ये वाइब्रेशन ने ये काम किया कि जो हमारी मम्मी छोटी मम्मी ने जो छोटे छोटे बच्चों को बड़ा किए थे वो डॉक्टर बन गया था। तो हॉस्पिटल में अभी आया था तो फिर उनका केस अपना केस हो गया ना। तो उसने बोला कि आपकी दीदी से मेरी मम्मी है, तो जो भी होगा मैं देख लूँगा। 5 दिन के बाद मम्मी ने फोन किया, मैं ठीक हो गया। तो इस तरीके से कई सारी बातें योग के द्वारा असंभव तो ऐसे कुछ नहीं है। इसीलिए यह भी हमको न्यूनेस के रूप से रचनात्मक के हिसाब से हमें कई बार एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। कई बार ऐसा भी देखा है चलते चलते किसी के ऊपर हमने प्रयोग करके देखा है, कि हमारे संकल्प यहां तक पहुंच पाता है नहीं पहुंच पाता है ना, तो उसमें हाथों हाथ रिजल्ट कई बार मिला है। तो इसलिए हम जो कि योग में रचनात्मकता लाने चाहते हैं तो इसके लिए कुछ न कुछ न्यूनेस, कुछ न कुछ ऐसी बातें हमको बनाने चाहिए, कुछ न कुछ ऐसी टारगेट हमारा होने चाहिए। आज मैं इसके ऊपर स्टडी करना चाहता हूँ। तो कई बार डिपार्टमेंट में भी पहले हमारे बहुत कुछ चलता था थोड़ा बहुत, लेकिन उस समय भी हम इसको प्रयोग करते थे तो उनको भी शक्ति मिलती थी, अपने को अपनी सेफ है ना रक्षा हो जाता। इसीलिए वाइब्रेशन देना माना ब्राह्मण को देते रहना चाहिए और उसको भी शक्ति मिलती है, अपना भी सेफ्टी हो जाता है और वाइब्रेशन बनती है, वातावरण बनता है और उसको भी निर्विघ्न बनाने में सहयोग दे सकते हैं तो हम भी निर्विघ्न बन सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी सारी चीजें हम आज जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो नए तरीके से प्रोग्राम बना करके करनी पड़ती है और अच्छी रीति से बैठ करके काफी कलम लेकर के बैठना पड़ेगा कि यो मुझे ये काम करके रहना पड़ेगा, आज करके रहूंगा तो इसमें क्या रिजल्ट मिल सकती है, नहीं तो जो खोलो की बैल की तरह क्या बोलते हैं तो ऐसे चले, आज भी चले कल भी चले तो इसमें खास प्राप्ति नहीं होगी और ब्राह्मण जीवन में रस नहीं आएगा। और जो रस नहीं आएगा तो ऐसे हम ब्राह्मण जीवन को आज हम कहते हैं ना कि जो इतनी सर्व प्राप्ति से संपन्न जीवन है, इतनी श्रेष्ठ जीवन है, फिर भी आज हमारा मन बुद्धि का भटकना क्यों कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मन बुद्धि को जो चीज चाहिए, ठोस चीज चाहिए, वो दे नहीं पा रहे आज हम। और उसको देने के लिए थोड़ा हल्के में नहीं होगा क्योंकि थोड़ी सी एक आध घंटा ज्यादा देनी पड़ेगी और अब टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा, तभी न्यूनेस आएगा, तभी रचनात्मक होगी, तभी हम परिस्थिति और समस्या से बचे रहेंगे। तो बचेंगे तभी तो दे सकेंगे, मैं खाली हूं दूसरों को काय को दूंगा मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं है और दूसरा हाथ फैला रहा है तो हम यहाँ बाबा के कमरे में लाके बैठा देते थे पहले पहले, कि कुछ दो वाइब्रेशन बोलते थे आत्माएं। तो इस तरीके से क्योंकि किसी के ऊपर रेफर करना पड़ेगा, हमारे पास नहीं होगा तो ये है अपने पास में कितने शक्ति को हमने स्ट्रक किया है, कितने अनुभव है। अनुभव नहीं होगा तो आगे भी चलना बहुत मुश्किल होगा ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि और ज्यादा परिस्थिति, बाबा ने कल परसों बोला ना पहाड़ है ना, दुखों का पहाड़ गिरेंगे, ऐसी समस्या आएगी, ऐसी घटनाएं आएगी, तो इस समय हमारी स्थिति क्या होगा। और हमने पहले से करके रखा वही काम आएगा, जो किया ही नहीं है ना, तो उस समय ब्राह्मण का मैं कभी कभी यह सुनाता हूँ, ब्राह्मण को सबसे ज्यादा रोना आएगा क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान सब पता है ब्राह्मण को, आगे क्या प्रलोभन मिलने वाला है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या स्थिति होगी, धर्मराज कहाँ है, सजाए की बातें सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं किया तो ब्राह्मण को सबसे ज्यादा रोना आएगा। क्योंकि बाबा ने बोला तो ये पश्चाताप के आंसू देखा नहीं जाएगा, तो बाबा ने क्या बोला कि चेंज बना परी दुनिया चेंज होगी। तो ऐसे इसके लिए पहले से हमने ये सब एक्सपेरिमेंट करके रखनी चाहिए और अभी भी जीवन मालामाल होने चाहिए, खुशी का दिन दोगुना रात चौगुना अनुभवों की अथॉरिटी से हम लैस हो जाए, ये है जीवन। तो ये हमको अनुभव करते जाना चाहिए, इसीलिए हम सब जानते भी हैं, मानते भी हैं, कर भी रहे, थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमने गलती किया हुआ है उसको चेक करके चेंज करने की जरूरत है। तो ये हमें आज ब्राह्मण जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, ओम शांति।
योगी जी।